मेरे अत्यंत प्रिय मित्रों नमस्कार। फ्रेंड्स, अक्सर लोगों को आध्यात्मिक जीवन के बारे में पूछते हुए मैंने देखा है और उनकी रुचि स्वाभाविक भी है। आज मैं आप सबकी इस रुचि को देखते हुए ही आध्यात्मिक जीवन के बारे में एक बहुत ही जीवंत प्रसंग की चर्चा करने जा रहा हूं। जी हां, बिल्कुल जीवंत प्रसंग। देखिए, एक बात तो आप जानते ही होंगे कि जो ऊर्जा है वह सीधे सीधे जीवन से ही जुड़ी हुई बात है। अगर आप आध्यात्मिक जीवन जीने में रुचि रखते हैं तो आपको अपने अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा पैदा करनी पड़ेगी। और यह आध्यात्मिक ऊर्जा कैसे पैदा की जाती है, इसके बारे में मैं आप सबके सामने एक उदाहरण पेश करने जा रहा हूं। अपने अनुभव का उदाहरण है जो मैंने और मेरी पत्नी ने देखा है, उसे बहुत गहरे रूप में महसूस किया है और फिर ये लगा कि नहीं, अब इसे आप सब तक पहुंचाया ही जाना चाहिए। खासकर अब मैं जिस प्रसंग की बात करने जा रहा हूं उसमें कुछ बहुत छोटी छोटी बातें भी हैं, लेकिन यदि आप इन छोटी बातों को मिस कर देंगे तो सही मायने में आप आध्यात्मिक ऊर्जा का जो स्रोत होता है उसे पकड़ने में चूक जाएंगे। इसलिए मेरी छोटी छोटी बातों पर भी आपको ध्यान देना होगा। दोस्तों, मेरे एक बहुत ही प्रिय मित्र हैं कमलेश पटेल, जो छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के मूलतः रहने वाले हैं, लेकिन नौकरी के लिए वे अमेरिका चले गए और वे अब अमेरिका में ही रहने लगे हैं। वे रायगढ़ में रह रहे थे और अनफॉर्चुनेटली जब उनके पिता की उम्र लगभग 50-52 साल की रही होगी कि उनकी पत्नी नहीं रही, और इसके बाद लगभग आप यूं मान करके चलिए कि 25 वर्ष का जीवन उन्होंने अकेले ही जिया। अकेले ही मैं इस रूप में कह रहा हूं कि बिना पत्नी के जिया, लेकिन इस बीच सौभाग्यवश उनका एक बेटा कमलेश पटेल और 3 उनकी बेटियां उनके साथ थीं, राइट? अब आप देखिए कि जो पिता थे वो चूंकि अब अकेले हैं, यूं कह लीजिए कि बच्चों की देखरेख करनी है या तो इस वजह से या अपने पुत्र के प्रति विशेष दायित्व का निर्वाह करने के कारण वो कुछ जरूरत से ज्यादा अनुशासन प्रेमी हो गए। अनुशासन प्रेमी होने का मतलब है कि कठोर पिता हो जाना, और आप जानते हैं कि कठोर पिता बच्चों को ज्यादा पसंद नहीं आते क्योंकि उन्हें इसके लिए अपनी बहुत सी जो बड़ी मासूम किस्म की इच्छाएं होती हैं उनका दमन करना पड़ता है। खेलने की इच्छा है, आप खेल नहीं सकते। दोस्तों के साथ जाने की इच्छा है, आप जा नहीं सकते क्योंकि पिता का आदेश है। लेकिन इसका लाभ भी होता है, और इसका लाभ उन्हें यह मिला कि वे बाकायदे अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते गए। इंजीनियरिंग में उन्होंने टॉप किया और फिर अमेरिका नौकरी करने के लिए चले गए, और स्वाभाविक है कि उनके साथ उनके पिता भी अमेरिका चले गए। हम लोगों को उनके पिता से मिलने का मौका पहली बार 2011 में मुझे विशेष रूप से मिला था, और जब हम लोग अमेरिका गए थे, न्यूजर्सी में वो रहते हैं, हम लोग उनके घर गए तो मेरी सबसे ज्यादा बातचीत उनके पिता से ही होती रही। वे बताते रहे इंडिया कैसा है, अमेरिका में उन्हें कैसा लग रहा है, और बहुत ही उत्साह के साथ वो अपनी बातें बता रहे थे। घर के पीछे उन्होंने एक छोटा सा, आप यूं कह लीजिए कि बगीचा जैसा बना रखा था जिसमें वो सब्जियां लगाते थे। मुझे वहां ले गए, उन्होंने घुमाया, एक एक चीज के बारे में बताया। सच पूछे तो उनकी उस संगति को मैंने एक धार्मिक संगति से कम नहीं पाया। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्य की बात कि जब 4 साल बाद हम फिर से उस घर में गए तो उनके पिता नहीं थे। इसकी सूचना हमें पहले मिल चुकी थी, लेकिन जब हम लोग वहां पहुंचे तो पहली मुलाकात की जो ध्वनियां थीं, जो दृश्य चित्र थे, वो मस्तिष्क पटल पर बार बार उभर रहे थे। थोड़ी बहुत बातचीत हुई उनके बारे में, तो इसके बाद कमलेश हम दोनों को एक कमरे में ले गए, एक छोटा सा कमरा, ठीक ठाक कमरा। और कमरा में देखा हमने कि चीजें बिल्कुल बिखरी हुई सी हैं, जैसे बिस्तर है कुछ इस तरह से पड़ा हुआ है, कुर्सी जो है वो टेढ़ी रखी हुई है, तकिया कुछ अलग एंगल से रखा हुआ है, टेबल पर कुछ चीजें बिखरी हुई हैं। तो देखते साथ ही मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि इस कमरे के साथ ये क्या न्याय किया जा रहा है, ये कैसे ये कमरा पड़ा हुआ है। लेकिन अब आप मेरी बात पर ध्यान दीजिए। कमलेश जी ने मुझे बताया कि यह जो कमरा है यह मेरे पिता का कमरा है, ये पिताजी का कमरा है, और इस कमरे को बिल्कुल ज्यों का त्यों रखा गया है जिस तरीके से उन्होंने इस कमरे को अपने जीवन के अंतिम सांस लेते समय छोड़ा था। इसकी कोई भी चीज डिस्टर्ब नहीं की गई है। दोस्तों, जैसे ही हम लोगों ने यह सुना मैं रोमांचित हो उठा। मैंने अपने आप को रोने से रोका, लेकिन आंखें डबडबाए आई थीं और गला तो भर ही चुका था, मेरे बोलने की हिम्मत नहीं रह गई थी। अचानक कुछ ऐसे हुआ जैसे कि कुछ अलग तरह की जो ऊर्जाएं हैं चारों ओर से आकर के मेरे ऊपर बौछार कर रही हैं, और इतनी पवित्र और इतनी आप यूं कह लीजिए वह श्वेत और चमकीली ऊर्जाएं थी कि मैं उसमें बिल्कुल अच्छी तरीके से नहाने लगा और मैं ऊर्जा अपने अंदर लेकर आया। अब आप देखिए कि किस तरीके से कमलेश जी के परिवार ने उस भावनात्मक ऊर्जा को एक आध्यात्मिक ऊर्जा में बदल दिया है। एक पिता का शयन कक्ष अब उनके लिए उपासना का स्थल बन गया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनके जो पिता हैं उनका आशीर्वाद मैं अपने ढंग से जो एनालिसिस करता हूं कुछ इस तरीके का है कि हमने दोनों बार उनके दोनों बेटों से मुलाकात की और अमेरिका जैसे देश के लिए यह बहुत आश्चर्य की बात है कि जब मैं मेरी पत्नी कमलेश पटेल जी उनकी पत्नी हर्षा जी भोजन कर रहे हों तो उनके बेटे भी साथ में आकर के भोजन करने बैठ जाएं। ये बहुत कम होता है, यानी कि जो उनके बेटों को संस्कार मिले हैं कहीं न कहीं उनके पिता की ही देन है। और इन दोनों बेटों ने अपने लिए जो जीवन साथी का चयन किया है वे दोनों की दोनों भारतीय हैं, और खासकर अमेरिका में कोई भारतीय का चयन करे यह भी एक बहुत बड़ी देन होती है। तो मुझे लगता है कि यह भी उनके पिता के आशीर्वाद की ही देन है। और कमलेश पटेल और उनका पूरा परिवार जिस तरीके से भारतीय संस्कारों को लेकर के और एक बहुत ही सुखमय शांतिपूर्ण और संतुलित जीवन व्यतीत कर रहा है, दोस्तों कहीं न कहीं मुझे इसमें उनके पिता का आशीर्वाद स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और यदि इस तरह का जीवन जीना ही आध्यात्मिक जीवन नहीं है तो फिर कौन सा है जिसे हम आध्यात्मिक जीवन कहेंगे, मुझे नहीं मालूम। यदि आप लोगों में से किसी को मालूम हो तो प्लीज़ मुझे बताएं, उस पर मैं विचार करूंगा। तो दोस्तों ऐसे पिता की पुण्य स्मृति को डेफिनेटली मैं अपनी पत्नी प्रीति अपनी ओर से बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा। 15 अप्रैल को ही उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा था। अब एक अंतिम सूचना के बीच के 4 दिन दोस्तों छुट्टी के हैं, सोमवार को ही अब आप सबसे फिर मुलाकात हो सकेगी, तब और विषयों पर हम लोग बात करेंगे। आप अपने अपने विषय मुझे सुझाएं, तब तक के लिए मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें, मुझे इजाजत भी दें। नमस्कार।